BBC.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
ये हफ्ता भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। करण जौहर ने अपनी किताब में अपने ही बारे में कई सीक्रेट बताए। ऋषि कपूर ने भी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने ही पप्पा राज कपूर के अफेयर खुल्लम खुल्ला बयान कर डाले। ऋषि कपूर ने तो जवानी में अवार्ड खरीदने की कोशिश की भी बात बताई। उधर हर्षवर्धन कपूर ने अवार्ड ना मिलने पर गुस्सा दिखाया। अब ये बात समझ से बाहर है कि हर्षवर्धन कपूर को किस बात का अवार्ड चाहिए, ये हो क्या रहा है। जो हो रहा है होने दे, आप मेरे साथ चले बॉलीवुड की सैर पर। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अपनी नुसरत जहाँ।
गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
क्या आप जानते हैं कि अदाकार मनोज बाजपेयी का पहला क्रश किस पर था? फिल्म काबिल के विलन रॉनित रॉय ऋतिक के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। और ये भी बताएंगे कि किंग खान को आम लोगों में किस तरह की दिलचस्पी है।
मेरे खिलाफ साजिश थी।
आप गए इसलिए?
कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है।
हर इंसान को किसी न किसी पर पहला क्रश होता है, किसी को पड़ोस की लड़की पर, तो किसी को अपनी क्लास फेलो पर, और किसी को तो अपनी ही टीचर पर। जी हाँ, ये छुपे रुस्तम है मनोज बाजपेयी। क्यों मनोज जी?
जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे जो आपके सामने जो हर दिन जो कोई महिला सामने आती है वो आपकी टीचर होती है, तो उस पर क्रश होना जो है बड़ा लाजमी सा हो जाता है। और उसी से आपका पहला अंदर ही अंदर जो जिसको कहें प्रेम, उसके बारे में जो है आप एहसास करना शुरू करते हैं।
ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के बैड बॉय रॉनित राय ने टीवी से फिल्मों तक का एक लंबा सफर तय किया है। रॉनित अदाकार तो हैं ही, साथ ही एक बिजनेसमैन भी हैं और एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं जो सलमान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को सिक्योरिटी फराहम करती है। रॉनित का कहना है कि एक मौके पर वो खुद ऋतिक रोशन के बॉडीगार्ड रह चुके हैं।
ऋतिक को ऋतिक के बचपन से जानता हूँ। वो समय ऐसा था कि कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी और रातों रात ऋतिक मेगा स्टार बन गए थे। मैं उनके साथ में था, उस फिल्म की सिक्योरिटी हम लोग करते थे। और उस समय कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी कि राकेश जी ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तुम खुद जा सको ऋतिक के साथ तो अच्छा रहेगा। तो मैं ऋतिक का बॉडीगार्ड था उस समय।
मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं।
वैसे कहा जाता है कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, अब शाहरुख को ही ले लीजिए।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ सालिमा।
उन्हें अक्सर कहते सुना गया है कि वो फिल्मों और फिल्मी लोगों के दरमियान रहते हैं और उन्हें आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है।
अमूमन जो मेरा काम है वो उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाता हूँ। सेट्स पे ही रहता हूँ, फिल्म की शूटिंग 10-12 घंटे होती है, फिर घर चले जाते हैं। तो मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है और उस मौके के अंदर कहीं पर ऐसा लगे कि कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी जो है हमारे काम के जरिए छू चुकी है, या कुछ उसमें यू नो कमर्शियल फिल्में होती हैं, हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो हम भी या मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कुछ ना कुछ किसी की ज़िंदगी कहीं पे बदल चुकी हो फिल्म को देखकर। तो मुझे अपने आप से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है।
अशकों में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग, रस्ते में थक के सो गई मासूम सी उमंग। दिल है कि फिर भी ख्वाब सजाने का शौक है, पत्थर पे भी गुलाब उगाने का शौक है।
कहते हैं शायरी इनका शौक भी था और इनकी विरासत भी। नगमा निगार जानिसार अख्तर के साहबजादे जावेद अख्तर ने अपने खानदान की रिवायात को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उन्हें एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। कई साल पहले जावेद अख्तर ने बीबीसी हिंदी के साथ एक गुफ्तगू में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की थी।
पीले पत्तों का मौसम जा चुका है, जमीन पे हर तरफ रंग ही रंग है, शोख और दिलकश उजले आसमान में सफेद बादलों की टुकड़ियां तैर रही हैं, वादियों में हरी घास के कालीन बिछ गए हैं। यही सब कुछ था जब हम तुम मिले थे, वही सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो।
कहते हैं नाम का असर शख्सियत पर जरूर पड़ता है, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जावेद साहब के नाम का असर उनकी शख्सियत पर जरूर नजर आया, क्योंकि उनका पहला नाम था जादू। तो जावेद साहब, ये नाम कैसे मिला आपको?
जी हाँ, पहले तो जादू ही था। असल में इसकी एक छोटी सी कहानी है कि मैं पैदा जब हुआ था एक हॉस्पिटल में ग्वालियर में, तो मेरे फादर अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठे थे और किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम क्या होगा, तो किसी ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुमने एक नज़्म लिखी थी अपनी होने वाली बीवी के बारे में, जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो इसका नाम जादू ही रख दो, तो जादू हो गया। फिर जब केजी वगैरह में मुझे भेजा जाने वाला था तो किसी ने कहा कि भाई अब कुछ सीरियस नाम रखो बच्चे का, तो मेरे पेट नेम से मिलता जुलता नाम जावेद रखा गया। आमतौर से होता ही है कि नाम से मिलता जुलता पेट नेम बनता है, मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ है।
मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।
ये तो जावेद साहब को लिखने का शौक था, लेकिन वो फिल्में बनाना चाहते थे और इस लाइन में करियर बनाने मुंबई चले आए। तो मुंबई आने का फैसला कब और कैसे हुआ?
जी, मैं जब कॉलेज में था तो ये मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद बम्बई जाऊंगा और मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहूंगा और फिल्में बनाने की कोशिश करूंगा। 19 बरस की उम्र में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद गया पहले कमाल अमरोही साहब और उसके बाद ब्रिज एक डायरेक्टर होते थे उनका असिस्टेंट रहा और फिर इसी दौरान धीरे धीरे मुझे दूसरे काम मिल गए।
प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।
जावेद अख्तर का कहना था कि मुंबई में इब्तदाई दौर उनके लिए काफी मुश्किल रहा और उन्होंने बेशुमार तकालीफ उठाई।
बहुत भूख का बड़ा भयानक रूप देखा है, मतलब ये आप समझिए कि 64 अक्टूबर से 69 दिसंबर तक ये कैसे गुजरे ये मैं ही जानता हूँ। इसमें यह है कि मुझको मेरे कोई हाथ या पैर नहीं कट गया, मुझे कैंसर नहीं हो गया, मैं अंधा नहीं हो गया, ट्रेन के नीचे नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो मुसीबतें आ सकती हैं आदमी पे और जो ट्रबल देख सकता है वो सब देखे। महीनों मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मुझे शाम को ये नहीं मालूम था कि मैं सोऊंगा कहाँ। कोई दोस्त वोस्त के घर मिल गया अगर सोने का मौका तो ठीक है, किसी की छत पे किसी कहीं, वरना रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ, पार्क्स में भी सोया हूँ, पेमेंट पे भी सोया हूँ।
समंदर की लहरें अपने सरों पे झाग के ताज सजाए इटलाती हुई साहिलों की तरफ बढ़ती हैं, साहिलों पर चटाने हैं, लहरें चकनाचूर हो जाती हैं।
मुंबई आए, फिल्मों से वाबस्ता भी हुए, लेकिन शायरी की शुरुआत नहीं हुई, तो इसका आगाज कैसे हुआ?
यहाँ जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं तो ये सोच के आया था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा तो सोचा भी नहीं था। लेकिन हुआ ये कि मैं जहाँ भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता था वहाँ पर मैं कुछ लिखता था तो लोग कहते थे कि भाई तुम्हें लिखना चाहिए, और मुझे साल भर के अंदर, जबकि मैं पूरी तरह 20 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैंने पहली पिक्चर के डायलॉग लिखे। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है वो मुझे बचपन से दिलचस्पी थी और वो माहौल भी ऐसा मिला था, मगर मैंने खुद कभी लिखी नहीं थी। मैंने शायरी बहुत लेट शुरू की, मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 32-33 साल का था जब मैंने शुरू की।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या।
जावेद अख्तर और सलीम खान की पहली बड़ी कामयाब फिल्म थी अंदाज। इसके बाद सलीम जावेद की इस जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें सीता गीता, हाथी मेरे साथी, यादों की बारात, दीवार, त्रिशूल, जंजीर, क्रांति और शोले जैसी फिल्में शामिल हैं।
महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं।
शाम, दोस्ताना, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया और डॉन सलीम जावेद की कामयाब तरीन फिल्में हैं।
डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
मोगैम्बो खुश हुआ।
जाती महज पर जावेद अख्तर ने अपनी पहली बीवी से तलाक के बाद अदाकारा शबाना आजमी से शादी की, तो इस मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई?
मेरी मुलाकात कब हुई ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मेरे ख्याल से मैंने जब से होश संभाला है या जब से शबाना ने होश संभाला है, हम एक दूसरे को जानते ही हैं। हम दोनों के फादर जो है वो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जानसार अख्तर और कैफी आजमी दोनों, तो ऐसा कोई, ये मैं आपको वो पल नहीं बता सकूंगा जब मैं पहली बार मिला था। ये ज़रूर है कि ये कोई मेरे ख्याल से लेट 70s अर्ली 80s में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हम लोग की मुलाकातें थोड़ी बढ़ गईं और वो फिर एक दोस्ती बढ़ी। तो ऐसे ही दोस्तियां जब मोहब्बत में तब्दील होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन रुमाल ज़मीन पे गिरा या किताबें गिर गई और हमने रियलाइज़ किया, आहिस्ता 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 रिश्ते का मिजाज कुछ बदल जाता है।
तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है।
जावेद अख्तर को इंडस्ट्री में तकरीबन 50 साल हो रहे हैं। वक्त बदला, नस्लें बदली, लेकिन आज भी उनका जादू बरकरार है। इसकी क्या वजह है?
जिंदगी ठहरी हुई थोड़ी है, ऐसे एक ट्रेन की तरह चली जा रही है। अब आप खिड़की का बंद कर दें, अरे बाहर तो हमने देख लिया, बाहर जरूर आपने देखा था, लेकिन अब वहाँ कुछ और है। अब आप वो ट्रेन वहाँ नहीं है जहाँ आपने देखा था, अब बाहर मंजर बदल गया है, ये किसी और जगह से गुजर रही है ट्रेन। तो ये पल पल छिन छिन नई होती है जिंदगी, और उसको हर पल आप हैरत से देखिए, यही जरूरी है, वरना तो आप मिस कर जाएंगे चीज।
ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं।
BBC बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।